पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम सभी। पवित्र मन रखो, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वही चरित्र है, है ना। और आज भी बाबा ने हमें ये बात याद दिलाई कि अंदर बाहर साफ रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। क्यों क्यों साफ रहना है, क्यों नहीं छिपाना है? क्योंकि अगर हम अंदर बाहर साफ नहीं रहते हैं, कुछ छिपाते हैं, वो छिपाई हुई चीज ही मेरे मन की अस्थिरता का कारण बन जाता है। जो मेरा मन स्थिर था वो अपने आप किसी बात को छिपाने का जो प्रयास किया उसने क्या कर दिया, मेरे मन को अस्थिर कर दिया। और जब हम अस्थिर मन लेकर अपने कर्म व्यवहार में, और क्योंकि कर्म व्यवहार तो उस घड़ी का थोड़ी है जिस घड़ी मैंने कुछ छुपाया, कंटिन्यूस चलता रहेगा ना, तो वो जो मेरी मन की अस्थिरता है फिर अगले कर्म में भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मन स्थिर था, मैं प्रेम से बात कर रही थी, मैं शांति से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मन में अस्थिरता आई क्या हो गया, मेरी बात करने का ढंग बदला या नहीं बदला, तो अगला कर्म भी क्या हो गया, बिगड़ गया। और ऐसी श्रृंखला तैयार हो जाती है, हर बात हर कर्म मेरा बिगड़ता चला जाता है। और इसलिए पहला इंपॉर्टेंस है, कुछ भी कर्म करने हम जा रहे हैं उसमें सफाई का बहुत बहुत महत्व है। और वैसे भी देखो, बाह्य सफाई को भी अगर हम देखें तो घर में भी जब सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, घर साफ करने का, नहीं कुछ और कामों में लगे, पहले क्या कर लो, घर की सफाई कर लो। ऐसा ही होता है नहीं होता है? इवन किचन में जाना है तो पहले क्या कर लो, वहां हम कुछ काम करें, कुछ तैयार करें, उससे पहले क्या कर दे, किचन को साफ कर दे। रात को सोने से पहले क्या करते हैं, किचन को पूरा समेट लेते हैं, नहीं समेट लेते हैं? हा? क्यों समेटते हैं, क्योंकि अगर रात को मैंने नहीं समेटा तो सुबह क्या होगा, वो सारा बिखराव दिखेगा। तो मैं भले गहरी नींद करके उठी होगी ना, मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, लेकिन जैसे ही किचन में गई और वो इतना सारा बिखराव देखा, मेरा मन अशांत हो जाएगा। और इसलिए सफाई का बहुत महत्व है, न सिर्फ आंतरिक लेकिन साथ साथ बाह्य भी। और अध्यात्म माना ही अंदर की सफाई है, और अंदर की सफाई होगी तो बाहर भी सफाई होगी। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र कहे, हेडक्वार्टर कहे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको है, सफाई को। आज हेडक्वार्टर में भी अगर कोई आते हैं, कौन सी चीज पर सबसे पहले प्रभावित होते हैं, क्लीनलीनेस। वो कहते हैं हम कई धार्मिक स्थानों पर गए लेकिन ऐसी स्वच्छता हमने कहीं नहीं देखी। और दूसरी बात क्या कहते हैं, हम कई स्थानों पर गए लेकिन ये स्थान जहां हरेक के चेहरे पर हमें चमक दिखती है, जहां हरेक के चेहरे से वो खुशी झलकती है, तो जब हरेक के चेहरे से चमक देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं, ये हुई वो आंतरिक सफाई को देख रहे हैं। है ना? चमक बाहर कब आती है? दर्पण में धूल जमी हो, दर्पण में धूल जमी हो तो कुछ दिखाई पड़ेगा उसमें? नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर मन में धूल पड़ी होगी तो आत्मा का प्रकाश वो बाहर आएगा? नहीं आएगा। और आत्मा का प्रकाश नहीं आएगा तो चमक कहां से दिखेगी? तो लोग भी जब आते हैं प्रभावित किस पर होते हैं? सफाई पर ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम आत्माओं ने जब अपनी जीवन की यात्रा आरंभ की उससे पहले हम प्रभु पिता के साथ अपने परम धाम में थे तो कैसे थे? एकदम प्योर थे। परमात्मा किसके एकदम प्योर किसके सन्मुख बैठे हुए थे? वहां पर एवर प्योर पिता के सामने बैठे थे। लेकिन वो प्योर आत्मा एवर प्योर आत्मा के सामने बैठी थी तो प्योर ही थी, लेकिन उससे दूर इस जगत में जब आत्मा आई तो आरंभ में तो उसी प्योरिटी की, क्योंकि मन रूपी दर्पण चित्त रूपी दर्पण क्या था? एकदम साफ था। अब जब मन की बात आई चित्त की बात आई तो पहले हम समझ ले मन क्या है और चित्त क्या है। ये शब्द बहुत आते रहते हैं जब कुछ पढ़ते हैं, मन चित्त या चेतन मन या अवचेतन मन या अचेतन मन या सुप्रा कॉन्शियस माइंड, ऐसे अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। और कई बार हम इसको ही समझने में क्या कर देते हैं? उलझ जाते हैं। हम कहते कहां पे मैंने चित्त पढ़ा था, कहां मैंने अचेतन मन पढ़ा था, कहां मैंने अवचेतन मन पढ़ा था, कहां मैंने चेतन मन पढ़ा था, कहां कॉन्शियस माइंड पढ़ा, कहां अनकॉन्शियस माइंड पढ़ा, कहां सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, कहां सुप्रा कॉन्शियस माइंड पढ़ा, यह है क्या चीज? तो वो पढ़ते पढ़ते तो उसी में ही उलझ जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। एक बहन थी वो मुझे कहती थी, मुझे आप बताओ चित्त क्या होता है, मुझे आप बताओ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कहा मैंने बहुत क्लासेस सुनती हूँ ना, मैं उसमें उलझ जाती हूँ, क्यों जब अलग अलग माइंड की बात करते हैं ना तो मैं उसमें ही उलझ जाती हूँ, क्लास का मजा ही निकल जाता है मेरा। कि वो शब्द जो मुझे पता भी नहीं थे वो मुझे पता हो गए क्लास सुनने के बाद, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होता है मन, क्या होता है चित्त, क्या होता है चेतन मन, क्या होता है अचेतन मन, क्यों ये पता करना जरूरी? क्योंकि इसकी सफाई, जब आंतरिक सफाई की बात आती है, इस मन और चित्त की सफाई की बात आती है। क्योंकि जब पहली बार आए तो साफ आए थे, लेकिन यहां आने के बाद हमने उसको क्या कर दिया? भर दिया कुछ कुछ। और वो होता ही है, उसमें हमारी भी गलती नहीं। हम सुबह स्नान करके निकले तो बिल्कुल साफ सुथरे थे, कपड़ा भी साफ था तो हमारा शरीर भी साफ था, लेकिन जैसे ही कारोबार में लगे तो कपड़े में भी कुछ कुछ अस्वच्छता आ गई और हमारे शरीर में भी आई ना, पसीना आ जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है, कपड़े में भी आ जाता है। तो उसमें मेरा दोष थोड़ी था, वो तो होना ही है। लेकिन उसके साथ फिर मैं जी भी तो नहीं सकती हूं ना, तो उसकी सफाई का भी मुझे क्या मालूम होना चाहिए? तरीका पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मन और चित्त की सफाई, जब हम कहते अंदर बाहर साफ रहना तो बाहर की सफाई तो हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर की सफाई, क्योंकि कई बार अंदर और बाहर की सफाई दूसरे रीति से भी ले। एक होता है बहुत बाह्य माना एक्सटर्नल चीजें, स्थूल चीजों को ले ले, घर को साफ रखा, अपने वस्त्रों को साफ रखा, अपने देह को साफ रखा। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी साड़ी मैली होती है तो नीचे की किनारी ज्यादा मैली होती है ना, ऊपर की इतनी नहीं होती। अब कल दूसरे दिन मेरे पास कुछ है नहीं, चलो ना इसको थोड़ा उल्टा करके पहन लेते। माना हमने क्या किया, जो असच्छा हिस्सा है उसको मैंने छुपाया। तो बाहर में भी देखो हम छुपाने का काम करते हैं, ऐसे ही अंदर मन को भी अगर देखे तो नहीं, पहले और बाह्य को देखे। घर में कोई मेहमान आने की खबर मिली, घर मेरा बिल्कुल बिखरा हुआ गंदा है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सारी चीजें इकट्ठी जमा कर लेती बिखरी पड़ी उसके ऊपर एक अच्छी सी चादर बिछा देती हूँ। करती हूँ नहीं करती हूँ? तो बाहर से क्या दिखाई दिया? साफ, लेकिन अंदर से कैसा दिखाई देगा? कचरा रहेगा ना। तो जैसे ही किसी ने चादर उठाया, कहेंगे गई मेरी इज्जत आज। हाँ, वही सोचते रहते कहीं हाथ में लगा इसको, कहीं इसको उठाए नहीं चादर को, है ना। तो अंदर बाहर में अंतर समझ रहा है। ये तो स्थूल चीजों की बातें हैं। अब आते हैं सूक्ष्म में, कि मुख से तो बहुत अच्छा बात कर रही थी मैं, मीठा मीठा, लेकिन अंदर भाव कुछ और था। होता है ऐसा? तभी गीत में कहा, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है हमें। मेरे मन में चलने वाली सोच भी साफ सुथरी हो, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द भी साफ सुथरे हो, और कर्म जो व्यवहार कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसके पीछे भी मेरा भाव साफ सुथरा हो। तो हम चलते समझते हैं मन किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, बताओ। रोज सुनते आते हैं, और विशेषकर दादी जानकी की क्लास में चित्त शब्द तो बहुत आता है ना। दादी जानकी की क्लासेस सुनिए ना, चित्त शब्द आता है उसमें, बहुत बार आता है। तो क्या समझते हो चित्त माना? जिसकी सफाई करनी है उसको पहले समझना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, किसी स्थूल चीज को भी साफ करना होता है तो मुझे पता करना होता है। जैसे अब ये पीतल का है तो ये नींबू से साफ होगा, है ना। स्टील का राख से हो जाएगा। तो जिसकी सफाई करना है उसका ज्ञान होना चाहिए ना। अब चित्त की सफाई करनी है, चित्त क्या होता है? मन की सफाई करनी है, मन क्या होता है? सफाई करनी है उसकी मुझे। तो क्या होता है मन, क्या होता है चित्त? एक के ऊपर एक दो कागज रखे हैं, ठीक है। ऊपर वाले कागज पे लिखने का कर्म किया जा रहा है, और नीचे वाले कागज पे ऊपर जो लिखा गया उसके निशान पड़ गए। पढ़ते हैं। ये ऊपर वाला कागज मन है, नीचे वाला कागज चित्त है। नीचे वाला कागज जो है वो चित्त है, ऊपर वाला कागज जो है वो मन है। मन पे जो लिखा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, और नीचे वो जो लिखा, वो लिखा नहीं है, उसके सिर्फ निशान आए। निशान आते ना उसके। और अगर आपने बार बार ऊपर वाले जो कागज पे लिखा था उसके ऊपर बार बार पेन घुमाई, और बहुत ताकत के साथ घुमाई, तो क्या होगा? नीचे वाला तो जो उसमें लकीरें पड़ी है वो भी बहुत कैसे हो जाएंगे, बहुत गहरे हो जाएंगे। तो चित्त क्या है, मन क्या है? मन है पर्दा, चित्त है स्टोरेज। उस चित्त में हम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते वो कहाँ जाता है? अंदर जाता है, चित्त में समा जाता है, ठीक है। जो कुछ भी बातें याद भी करते हैं, हर चीज अनुभव नहीं होता, कुछ बातें याद करनी पड़ती है। स्कूल में गए तो याद किया, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है ना। हेडक्वार्टर में मधुबन में पहुंचना लंदन से तो याद करना पड़ता है, यहां से पहले ये फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, फिर ये सब याद करते हैं ना हम। तो एक है अनुभव जीवन के, वो भी कहां चले गए, चित्त में चले गए। दूसरा है याद करते हैं कुछ, वो भी उसमें चले गए। तीसरा है संस्कार। संस्कार, मैंने गाड़ी चलानी सीखी, गाड़ी चलानी सीखी तो पहले किसी का सपोर्ट लिया, मेरे साथ कोई था जो मुझे सिखा रहा था, मुझे को सपोर्ट दे रहा था। लेकिन एक दिन सीखा, दो दिन सीखा, तो धीरे धीरे मैं अपने आप को क्या कर रही, संभालती जा रही हूं। 10-15 दिन के बाद जो मुझे सपोर्ट दे रहा था उसका सपोर्ट लेना छोड़ दिया। और पहले जब मैं सीख रहा था पूरा मन बुद्धि उसमें लगा हुआ था। उस सीखने के समय में, उस समय चॉकलेट नहीं खाता था, उस सीखने के समय में कान में वो जो आजकल लगा के सुनते रहते हैं वो नहीं कर रहा था मैं। कंटिन्यूस आजकल कानों में लगे रहते हैं वो ईयरफोन। लेकिन जब पहली बार कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तब ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि पूरा मन बुद्धि वहां मुझे लगाना था। तो न मैं खाता हूं, न किसी और व्यक्ति से बोलता हूं, न कोई और सुनता हूं, सिर्फ पूरा फोकस मेरा सीखने पर है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं मेरा उसमें हाथ बैठता जाता है, और अब ज्यादा मन बुद्धि फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब तो जब 15-20 दिन हो गए, अब मैं सपोर्ट भी नहीं ले रहा हूं किसी का, गाड़ी भी चला रहा हूं, मजे से बात भी कर लेता हूं, चॉकलेट भी खा लेता हूं और गीत भी सुन लेता हूं। इसको कहते हैं संस्कार, कि जहां मन बुद्धि की अभी जरूरत नहीं है तो वो संस्कार भी चित्त में ही रहते हैं। तो संस्कार जैसे कि हार्ड डिस्क है। संस्कार क्या है? हार्ड डिस्क है जिसमें सब कुछ स्टोर किया हुआ है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो संस्कार है, चाहे कोई बातें जो हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कहाँ स्टोर हो रहा है? चित्त में स्टोर हो रहा है, चित्त में। इसीलिए बाबा कहते हैं हर प्रकार के संस्कार तुम्हारे अंदर है, वो किधर है? चित्त में है। तो चित्त में जब पहली बार उतरे थे ना हम घर से, कौन से संस्कार लाए थे? सुख शांति प्रेम के, तो वो भी अभी तक उसी चित्त में पड़े हैं। और इसीलिए चित्त को अवचेतन मन कहते हैं इंग्लिश में, सब कॉन्शियस माइंड, और मन को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। तो मैंने जो बताया, दो पेज बताए ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इंग्लिश में शब्द शब्द नीचे के लिए यूज किया जाता है ना? सब माना नीचे वाला, सब ऑर्डिनेट माना नीचे वाला, ऐसा ही होता है ना? तो ये नीचे वाला जो है, और मन माना ऊपर वाला। और अब नीचे ऊपर का मतलब क्या है? ये आत्मा है, ये शरीर है, इसके बीच में मन है ना? इसके बीच में मन है। अगर मन का संयोग ना हो तो आंख भले खुली है, मैं देख सकती हूं आपको, मन का संयोग ना हो तो कान भले खुले हो सुन सकती हूं। आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो मैं बोल रही हूं, मुझे लग रहा है आप मुझे सुन रहे, पर आप कुछ और कर रहे हैं, होता है नहीं होता है? तो मन का संयोग बहुत जरूरी है। अगर मन इंद्रियों के साथ संयुक्त नहीं होगा तो इंद्रियां भले खुली दिखाई पड़ेगी, आंख खुला दिख रहा है पर आंख देख नहीं पाएगा। तो मन का इनके साथ संयुक्त होना बहुत जरूरी है। तो यह है आत्मा, यह है शरीर, बीच में है मन। सिक्का होता है ना, सिक्का, सिक्के के दो पहलू कहते हैं ना हम, एक चित्त और एक पट, बोलते हैं ऐसे। तो चित्त किसको बोलते हो और पट किसको बोलते हो? हेड एंड टेल बोलते हैं ना इंग्लिश में। किसको हेड बोला जाता है, किसको टेल बोला जाता है? टेल किसको बोलते हैं, हेड किसको बोलते हैं? हेड माना हेड, ये है ना हेड। तो जिस तरफ में किसी का चित्र है उसको हेड बोला जाता है, और बाकी दूसरा बच्चा टेल है ना। तो चित्त माना जहां चित्र है, हेड माना चित्र ही तो है, और क्या है? चित्र ही है ना ये। तो चित्त माना चित्र, और पट माना पर्दा। तो मन है पट, पर्दा, और नीचे वाला जो है, जैसे कहा सिक्का है, उसके दो पहलू इधर वाले को और इधर वाले को नाम दे दिए। तो जिस साइड में चित्र है वो है चित्त, क्योंकि ये जाके अंदर ही छपेगा ना, हम जो कुछ देखेंगे अंदर जाके छपेगा ना वो। तो चित्त में चित्र अंकित होते रहते हैं। तो ये चित्र, ये आत्मा, ये शरीर और ये मन, इसके दो पहलू, इधर वाला है मन, इधर वाला है चित्त। नीचे हो गया ना, सब कॉन्शियस माइंड बोला ना हमने इसको, सब कॉन्शियस माइंड, और इसी को कहते हैं अवचेतन मन, और ऊपर वाले को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कि पर्दे पर चीजें आती रहती हैं। तो पर्दे पर चीज आने के दो कारण हैं। मन में दो तरीके से बातें आती है, एक बाहर की दुनिया से आ रही है और एक बाहर की दुनिया मेरे सामने अभी नहीं है, मैं न देख रही हूं बाहर का न सुन रही हूं, लेकिन अंदर से आ रहा है मन में। घटनाएं घटी है मेरे जीवन में, वो मेरे अंदर आ रही है। मन के पर्दे पे आता है, ऐसा नहीं आता है, या फ्यूचर का आता है, कल का सोच रही हूं क्या होगा कैसा होगा, तो पर्दे पे आ रहा है ना, यहाँ पे तो अंदर से आ रहा है ना निकल के, कि मेरे पास तो ये है नहीं, फिर कैसा होगा। तो इसकी सफाई करनी है। सफाई किसकी करनी है? इस मन की, इस चित्त की सफाई करनी है। तो मन वाला ही जो मन पे आता है वही जाता है चित्त में, वही चित्त में जाता है ना, और जो फिर चित्त में होगा वही कहां पे आएगा, मन में आएगा। बाहर की इंद्रियों से देखा मन के संयोग हुआ तो फिर जाके वो कहां बैठा, चित्त में। चित्त में जो जमा था उसमें से इधर आया मन में। समझ में आया कैसे रिवर्स हो रहा है, मन वाली बात चित्त पे जा रही है, चित्त वाली बात मन पे आ रही है। अब इस मन की सफाई करनी है, चित्त की सफाई करनी है। क्यों सफाई करनी है, तो पहले ही बताया कि अस्थिर हो जाएगा मेरा मन अगर सफाई नहीं करूंगी तो, है ना। अगर सफाई नहीं करूंगी तो यही मेरे टेंशन का कारण बन जाएगा। एक बार एक महात्मा ने अपने शिष्यों को कहा कि जिस किसी को भी किसी के प्रति ईर्ष्या है मन में, नफरत है मन में, वो कल क्या करेंगे, आलू लेकर आएंगे। सुबह रोज प्रवचन सुनने आते थे शिष्य गुरुजी के पास, तो गुरुजी उनको प्रैक्टिकल समझ देना चाहते थे। तो कहा कि आप लोगों के जिस किसी के भी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, नफरत है, तो आप क्या करना, आलू लेकर आना, और जितने लोगों के प्रति नफरत है उतने आलू लेके आना, और उस हर आलू पे जिस जिसके प्रति नफरत है उसका नाम लिख कर आना। अब बेचारे शिष्य समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, लेकिन गुरुजी का क्या करना है, जैसा बोल रहे हैं वैसा आज्ञा का पालन करना है। तो किसी के पास चार आलू थे, किसी के पास छह आलू थे, किसी के पास आठ आलू थे, किसी के पास एक था, किसी के पास दो, क्योंकि जिसको जितने लोगों से ईर्ष्या थी, नफरत थी, उसको कहा गया था कि उतने आलू लेकर आना, तो सब आलू लेकर आए। और गुरुजी ने क्या कहा उनको, कहा ये सात दिन तक ना अपने पास रखे रहो, सात दिन तक ये अपने पास रखे रहो, और अपने पास 24 घंटा, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे सो रहे हो, ये आलू आपके पास सदा रहेंगे। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीता, गुरुजी ने इनकी आपस में, क्योंकि उसने तो बोल दिया सात दिन रखना है, तो गुरुजी से तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपस में शिष्य बातें करने लगे, गुरुजी हमको क्या सिखाने जा रहे, इनको पाल पाल के हमको कितना कष्ट हो रहा है, बार बार इनको साथ में लेके जाओ। और फिर किसी की तो बदबू भी आने लगी आलू की, तो बोले गुरुजी को समझता नहीं कि हमको सात सात दिन तक ऐसे अपने साथ, जब देखो तब साथ में, 24 घंटा साथ में, आखिर क्या सिखाना चाहते हैं गुरुजी हमको। लेकिन गुरुजी ने सात दिन पूरे हो तब कुछ बोले ना, तो आपस में ही बातें कर रहे हैं कि कितना कष्ट हो रहा है इनको, जहां देखो वहां लेके जाओ साथ में, फिर इसकी बदबू को सहन करो। ठीक है, सात दिन बीते, तो सात दिन बीते तो गुरुजी ने कहा अभी ये आलू छोड़ दो, लेकिन एक बात बताओ, जब ये आलू आपके साथ थे तो आपको बहुत आराम मिला होगा ना। कहा नहीं नहीं गुरुजी, काहे का आराम मिला, एक तो उसको बार बार साथ में उठाओ, और कोई सामान हो उसको बार बार याद करो कि उसको उठाना है, और दूसरा उसमें से बदबू आ रही थी। तो गुरुजी ने कहा यही तो बात मैं तुमको समझाने जा रहा था, ये जो ईर्ष्या नफरत यहां पकड़ के रखी है ना, यही कष्ट पहुंचा रही है, यहां से निकाल दो उसको। यही क्या कर रही है, मन को, चित्त को क्या कर रही है, मैला भी कर रही है, और यहीं से बदबू आ रही है। तो ईर्ष्या, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, आज हम जिनको मानकर बैठे हैं, क्या कहते हैं हम, अगर आपके साथ ऐसा होता ना, क्या आपको घृणा नहीं आती। माना हमने बिलीफ सिस्टम बना लिया है, ईर्ष्या आना तो स्वाभाविक है, घृणा आना तो स्वाभाविक है। अगर मैंने बिलीफ सिस्टम ही ये बना ली, माना वो विचार मैंने अंदर रखा ही हुआ है, तो जब भी कोई ऐसी बात होगी मैं तुरंत घृणा कहूंगी, मैं तुरंत ईर्ष्या करूंगी, और वही मेरी ईर्ष्या, वही मेरी घृणा मेरे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएंगी। वो यहां पे हमेशा साथ, 24 घंटा साथ में रहती है ना, 24 घंटा साथ में रहती है नहीं रहती है, तो 24 घंटा ये क्या हुआ, मैला हुआ या नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी बातें दी है, जीवन के सत्य समझाए। हमने सत्य क्या समझ के रखा, गुस्सा करना तो जरूरी है, ऐसी सिचुएशन में ईर्ष्या कैसे नहीं होगी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, वो आगे निकल गई मैं पीछे रह गई, कैसे नहीं होगी मेरे को ईर्ष्या। तो हमने ये बिलीव सिस्टम बना ली कि ये होना ही है, और जब तक हम इस बिलीव सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे, बाबा ने जो बिलीव सिस्टम दी है उसको नहीं स्वीकार करेंगे, तब तब अंदर बाहर की सफाई संभव नहीं है। तो बिलीव सिस्टम को चेंज जब तक नहीं करेंगे, अंदर बाहर की सफाई नहीं हो सकती। हमने बना के रखा है ना, अरे मैं अगर उसको सच बोलती उसको बुरा लग जाता ना, इसलिए मैंने सच नहीं बोला। तो मान्यता बना के रखी है कि झूठ बोलना भी चलता है, वो तो मैंने उसको बुरा ना लगे इसलिए, लेकिन मन में तो सोच लिया कि वो वाइब्रेशन नहीं जाएगी क्या उसके पास, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म से बहुत स्थूल में आ गए। सूक्ष्म की क्या रिजल्ट पड़ती है उसको हमने क्या कर दिया, टोटली भुला दिया। बस स्थूल की रिजल्ट हमको पता रहती है कि अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगी ना उसको बुरा लगेगा, इसलिए क्या करो उसके साथ क्या कर दो, झूठ बोल दो। लेकिन मन में जो उसके लिए उस प्रकार का सोच के रखा है, वो वाइब्रेशन वहां तक जाएगी, वो सोचा ही नहीं ना मैंने। और इसलिए फंडा को ठीक करना पड़ेगा। किसी इमारत को खड़ा करना है तो उसकी नींव को पहले देखा जाता है। नींव ही अगर स्ट्रांग नहीं है तो इमारत उस पर चाहे कितनी भी सुंदर खड़ी कर लो, वो एक दिन क्या हो जाएगी। और इसीलिए बाबा आकर के हमारे फंडामेंटल को चेंज करता है। क्या बताता है, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, बदले की भावना रखना, ये तुम्हारे संस्कार है ही नहीं, ये तो माया के संस्कार है। तुम्हारे तो संस्कार क्या है, सत्यता हमारा संस्कार है ना, ट्रुथ बोलते हैं, ट्रुथ इज माय ओरिजिनल नेचर। शांति तुम्हारा अपना संस्कार है, प्रेम तुम्हारा अपना संस्कार है। तो हमें अपने आप को अपने मूल संस्कारों की बार बार स्मृति दिलानी होगी, कर्मों की फिलॉसफी बार बार अंदर घोटते रहनी होगी, संसार का जो चक्र है उसका जो नियम है उसको क्यों बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र को फिराओ। ये जीवन के सत्य है ना, जिसको हम टोटली भुला चुके थे। हमने क्या कहा, ये झूठ बोलना, ये गुस्सा करना तो सदा से चला आया है दुनिया में, तो लोग यही बोलते हैं ना, कोई ऐसा समय था नहीं कि जब झूठ नहीं हो और सच ही सच हो। लेकिन बाबा ने क्या आके बोल दिया, चेंज किया ना बिलीव सिस्टम की, बच्चे ऐसी बात नहीं है कि कोई एक समय धरती पर था ही नहीं कि जहां सच नहीं हो, झूठ हमेशा सच और झूठ साथ में हो। नहीं, बाबा ने आके चेंज की हमारी बिलीफ सिस्टम का। एक समय धरती पर था जहां झूठ का नाम मात्र भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सत्य ही था। तो वो जो समय था वो वाले संस्कार अंदर है, वो वाले संस्कार अंदर है, लेकिन समय के चलने के बाद वो चक्र जैसे जैसे फिरा, सत्यता में क्या आने लगी, कमी। कौन सी सत्यता में कमी आई, नेचुरल सोल कॉन्शियस रहते थे हम वहां पे, नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति रहती थी ना हमारी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। दो युग आने के बाद हमने क्या बोल दिया, मैं देह हूं। लेकिन दो युग तक हम सोल कॉन्शियस थे, ये हमारी सच्चाई थी। लेकिन दो युग के बाद हम अपनी सच्चाई को भूले और आज उस झूठ के चरम सीमा पर आ गए, मैं ये हूं। तब बाबा आके हमारा परिवर्तन कराता है। नहीं, समय था जब सच्चाई जीवन में थी, तो मुझे उस सच जो बिलीफ सिस्टम बाबा ने दिए उसको बार बार अंदर में क्या करना है, घोटते रहना। कहा ना, कागज पे आप जो चीज लिखोगे निशान उसके ही बनेंगे। तो दो युग से हमने सोचा ना, ये तो चलता ही है झूठ बोलना, ये तो ईर्ष्या करना तो चलता ही है। वो दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं ना, वो जेठानी और देवरानी का वो दिखाते हैं, है ना, तो वो दिखा के और वो जो वहां के गाइड होते हैं ना, वो बोल माना वो इस प्रकार से बताते हैं और इस प्रकार की मान्यता बिठाते हैं, ये तो सदा से चला आया है, चलता ही रहेगा। मान्यता बिठा दी कि ये तो होता ही रहता है, हमेशा होता है, आदि में भी हुआ, बीच में हुआ, अभी भी होता रहेगा। लेकिन बाबा ने आके क्या कहा, बच्चे दो युग तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे उस बिलीफ सिस्टम को क्योंकि अगर ये बिलीफ सिस्टम लेके चलती हूं ना, ये तो होता ही है, तो व्यवहार में वो आएगा ना, व्यवहार में वो आ जाएगा। इसलिए फंडामेंटल चेंज लाने की बहुत जरूरत है। फंडामेंटल चेंज में सबसे पहला चेंज, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा रोज यही पढ़ाता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या कहते हैं, बाबा तो रोज रोज वही पढ़ाते रहता है ना। या कई बार फिर बच्चे कहते हैं, मैं रोज सुनता हूं पढ़ता हूं पर बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है, उससे अच्छा क्या करना, सुनो ही नहीं। ऐसा होता है ना कई बार। बाबा रोज रोज वही क्यों पढ़ाता है, क्योंकि वो बात अभी प्रैक्टिकल जीवन में उतरी नहीं है। दूसरी बात, मैं सुनता हूं पर मुझे याद नहीं रहता, फिर मैं क्यों सुनूं बार बार, ये भी आती है मन में बात। एक शिष्य था, उसको गुरुजी ने कहा, उस यही बात कहा, क्योंकि गुरुजी के पास रहता तो शिष्य को गुरुजी ने कहा कि ये फलानी फलानी किताबें हैं अध्यात्म की, धार्मिकता की, वो आप पढ़ो, उसका मनन करो। तो पढ़ता था लेकिन देखता था कि जितना पढ़ता हूं उतना याद भी नहीं रहता है मुझे। तो कहा, गुरुजी मैं पढ़ता तो हूं पर मुझे कुछ ना याद नहीं रहता, उससे अच्छा पढ़ना छोड़ दूं। जब याद ही नहीं रहता पढ़ने के बाद भी, तो क्या मतलब, फालतू क्यों मैं अपना समय गवाऊं इसमें। तो अब गुरुजी ने भी क्या कहा, उसको सीधा जवाब नहीं दिया, उसको कहा एक काम करो, ये पास में ही ना एक टोकरी रखी थी, वो बांस की लकड़ी की बनी हुई होती है ना, कहा पास में तालाब है ना, वहां से है ना, इसमें पानी भरकर लेकर आओ। तो गया पानी भरने, लेकर आया, लेकिन जब तक पहुंचे पानी तो बहकर खत्म हो जाता था। फिर दूसरे दिन फिर वही काम देता गुरुजी उसको कि जाओ ये भर के लाओ, फिर वो बेचारा पालन करके जाता था, फिर आता था फिर खाली, क्योंकि शिष्य है ना उसको मानना तो पड़ेगा। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया, गुरुजी आप रोज मुझे ये लेकर भेजते हो और मैं रोज लेकर जाता हूं, पानी भरता भी हूं, लेकिन आपके द्वार तक पहुंचते पहुंचते इसमें पानी रहता ही नहीं है, आप क्यों मुझे बार बार ऐसा काम करने के लिए बताते हो। कहा ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही है कि तुम जाते हो पानी भरने, लेकिन जब उसमें पानी भर के लेके आते हो तो यहां पहुंचते पहुंचते उसमें पानी रहता ही नहीं, ये तो बात मुझे भी समझ में आ रही है, लेकिन और एक बात है जो उस पर आपका ध्यान नहीं गया। का कौन सी बात है, कहा देखो ये जो टोकरी जिसको आप लेकर गए थे ना, जब शुरुआत में पहले दिन लेकर गए थे उसमें कितनी मिट्टी गंध फंसी हुई थी, और अब इतने दिन उसमें रोज पानी भरकर लाकर आते थे, भले खाली आती थी, लेकिन आपने नोटिस किया इसकी गंदगी निकल गई है काफी। कहा हाँ, तो अंदर बाहर की सफाई की जो बाबा बात कर रहे हैं, इसलिए बाबा क्यों कहता है रोज रोज मुरली सुनो, भले याद न रहे लेकिन जितना समय हम उसको सुन रहे हैं वो अंदर की मैल को साफ करने का तो काम जरूर कर रहा है। तो पहला फंडामेंटल चेंज कि अपने आप को देह नहीं आत्मा समझो, वो भी कब मिला, जब ज्ञान मार्ग पर चलने का कदम उठाया। जब इस द्वार पर आए ही नहीं तो मालूम थोड़े था, इसलिए कहा सुनो, ज्ञान का श्रवण जरूर करो। ये ज्ञान का श्रवण ही अंदर की सफाई करने में मदद देगा। तो पहला काम सुनना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान जो भी सुनते हो ना और उसको प्रैक्टिकल में आप उतारो, और प्रैक्टिकल में उतारने के बाद दिन बीत जाएगा, रात आएगी, है ना। रात आएगी तो क्या करेंगे, हम सोएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, सोने से पहले क्या करो, जो भी दिन भर में हुआ वो सब क्या करो, मुझे सुनाकर खुद हल्का होकर फिर सो जाओ, और जब उठो दिनचर्या में प्रवेश करो उससे पहले मेरे साथ मिलन मनाओ। यही कहता है, बहुत फंडामेंटल चीजें, यही हमारी सफाई का काम करती है। पर हम इन बातों को क्या करते हैं, उसकी गहराई नहीं समझते हैं ना, तो उसको हल्का छोड़ देते हैं। रोज रोज सुनते याद तो नहीं रहता है, छोड़ दो, क्या रात को बाबा को याद करना, है ना। लेकिन इसमें ही सफाई का माध्यम निहित है। एक बार एक साधु था और एक व्यक्ति था जिसके मन में बहुत सारे विचार उठते थे, और विचारों का प्रवाह इतना चलता था कि वो रुकते ही नहीं थे, और उसके कारण परेशान था। ऐसा ही होता है ना हमारे अंदर भी, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। टेंशन किसको बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं। तो जो विचारों का प्रवाह उसके अंदर चल रहा था ना, उससे बहुत परेशान हो गया था, कहीं उसका स्टॉप ही नहीं हो रहा था। तो आया साधु के पास कि स्वामी जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत, इस विचारों का प्रवाह रुकता ही नहीं है, मन बहुत अशांत हो गया है। तो साधु ने क्या कहा, थोड़ी दूरी पर ही दूसरा नगर है, वहां पे मेरा मित्र रहता है, साधु का मित्र, साधु ही है ना, आप उसके पास जाओ। तो उसके पास गया तो वो जो मित्र था उसका, साधु, वो किसी सराय का क्या था, चौकीदार था। बोला बस उसके पास जाओ और उसकी दिनचर्या को आप नोटिस करो और आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि समस्या से व्यक्ति जो परेशान होता है, समाधान के लिए उसको जो बताया जाए वो करने के लिए तैयार होता है। तो वो गया पड़ोस के ही नगर में जहां इसका मित्र रहता था और जो चौकीदारी करता था, सराय माना धर्मशाला, जहां लोग आते जाते हैं अपना काम अपना जो जरूरत है वो पूरी करके फिर क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो वो वहां पर चौकीदार था, इस साधु का मित्र साधु, वो चौकीदार था वहां पे। और उसकी दिनचर्या आप देखो, कहा, और उसकी दिनचर्या देखते देखते आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये इसकी दिनचर्या को देख रहा है कि ऐसा कुछ उसकी दिनचर्या में कुछ विशेष नहीं है, चौकीदारी तो है वो, और ज्ञान के तो कोई ऐसे लक्षण उसमें दिख ही नहीं रहे कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, साधारण सा व्यक्ति है, सामान्य सा व्यक्ति है। और लेकिन एक विशेषता थी कि जिससे बालकों का स्वभाव होता है, छोटे बच्चों का, बिल्कुल सरल होते हैं, निर्मल होते हैं, निर्दोष होते हैं, वो उसमें मासूमियत बालकों जैसी थी, बहुत ही सरल स्वभाव का। तो देखता रहा, लेकिन उसको अपनी समस्या को तो समाधान ही नहीं मिला। तो दिन भर जब उसको देखता था, सिर्फ रात में वो क्या करता है, सुबह क्या करता है, वो उसको नहीं पता था। लेकिन उस साधु ने तो उसको कहा, उसकी पूरी जीवनचर्या को देखा, देख कर आओ। तो देखा तो उसने बोला कि इतने दिन रहकर इसकी जीवनचर्या में ऐसा विशेष तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रात और सुबह में क्या करता है उसका मुझे पता नहीं चला है, मैं उसको पूछ लेता हूँ फिर मैं चले जाता हूँ। तो उसको पूछा कि रात में तुम क्या करते हो और सुबह क्या करते हो, बाकी दिन की तो दिनचर्या मैंने आपकी देख ली है, रात वाली सुबह वाली नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। कहा बस क्योंकि मैं इस धर्मशाला का चौकीदार हूँ ना, तो जितने सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं ना, रात को मैं क्या करता हूँ, उनको मांझ लेता हूँ। और सुबह क्या करता हूँ, क्योंकि जो मांझता हूँ तो रात भर में फिर से उसमें थोड़ी बहुत तो धूल फिर से लग जाती है ना, तो सुबह मैं उसको फिर से धो लेता हूँ। तो अब इसको उसकी पूरी दिनचर्या पता चल गई। गया उस साधु के पास जिसने उसको भेजा था और बताया कि आपने मुझे कहा था कि मेरे मन की जो समस्या है उसका सलूशन उधर से मिलेगा उसकी जीवनचर्या देखने के बाद। तो मैंने तो उसकी जीवनचर्या देख ली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। आप कुछ बताइए। कहीं उसमें समस्या का समाधान तो आ ही गया पर आप उसको समझ नहीं पाए हैं कि दिन भर में हमारा भी क्या हो रहा है। वो तो धर्मशाला थी, लोग आ रहे जा रहे थे, बर्तन यूज कर रहे थे, झूठे हो रहे थे। अब हमारे जीवन में क्या हो रहा है, सुबह उठते और रात तक कितने लोग मिलते रहते हैं हमको, और कितने लोगों के कितने अलग अलग मूड देखने को मिलते हैं, और उन मूड को देख के यहाँ क्या क्या चलता है, क्या क्या चलता रहता है, चलता है कुछ कुछ, ये झूठा हो जाता है नहीं हो जाता है, होता है नहीं होता है। मैं अपने रीति से ठीक थी लेकिन फलानी को देखा कैसी व्यक्ति है ये, ऐसा भी करना चाहिए क्या, किया मैंने गंदा इसको, किया ना मैंने इसको गंदा। तो दिन भर में कितने लोग आते जाते हैं, उनकी बातों को देख देख कर हम इसको क्या करते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। और इसलिए बाबा ने नियम दिया है, उसने क्या क्या करता था, रात को बर्तन मांज देता था, रात को बर्तन। तो रात को जब सो रहे हैं ना, सारी बातें जो भी हुई है मेरे जीवन में, चाहे मैंने किसी के प्रति गुस्सा कर लिया, किसी को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या आ गई, किसी को देखकर नफरत आ गई, किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया वो सामने आया और मुझे बदले की भावना आ गई, जो कुछ भी मेरे मन में उभरा, भले मेरे मूल संस्कार वो नहीं है लेकिन दो युग तक माया का संग होने कारण वो भी संस्कार मेरे अंदर है और वही बार बार उभर के आए, जबकि बाबा ने मुझे ओरिजिनल संस्कार की याद दिलाई, वो याद आने चाहिए थे, वो नहीं आए याद और वो दूसरे वाले याद आए। वो बाबा को सब कुछ बता दो और खुद हल्का हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमने बात कही थी, ये मन है, ये चित्त है, ऊपर वाला मन है, नीचे वाला चित्त है। अगर ये बात रात को सोने से पहले यहां से नहीं हटाई, ये नीचे बैठेगी, ये नीचे बैठ जाएगी। अभी तो सिर्फ पर्दे तक थी, ऊपर वाला कागज पर्दा है ना, ये स्टोरेज में चली जाएगी। और इसीलिए नियम है, रात को सोने से पहले दिन भर में जो कुछ भी हुआ है वो बाबा को दे दो, अर्थात यहां से निकाल दो। क्योंकि अगर यहां से नहीं निकाली ना, धीरे धीरे नीचे बैठेगा वो। घरों में भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, बोलते उसको हिलाओ नहीं रहने ना, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, बोलते नहीं बोलते है? ये ऊपर वाली बात है ना, अगर बाबा को देके इसको हल्का नहीं किया ना, ये नीचे जाके चित्त का एक अंग बन जाएगी, चित्त में बैठ जाएगी। और एक बार कोई बात चित्त में बैठ गई, वो चित्त से बाहर पर्दे में आती रहेगी। वही तो प्रॉब्लम थी ना उसकी, कि विचारों का प्रवाह कंटिन्यूस चल रहा है और मन बहुत परेशान। तो देखी तो सिर्फ एक बात थी उसकी मैंने, लेकिन कंटिन्यूस, क्योंकि रात को साफ नहीं किया ना उसको, चली गई चित्त में। और एक बार चित्त में होगी तो बार बार आ रही। वो व्यक्ति तो सिर्फ एक मिनट के लिए मेरे सामने आया था, लेकिन अब मेरे पास कंटिन्यूस लगातार यहां पर है और वही मुझे क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो रात को बर्तन मांझ लेना चाहिए। तो चित्त भी क्या है, स्टोरेज का एक पात्र ही है ना वो भी, तो उस पात्र में वो गंदगी जमा न हो, उससे पहले मन वाली बात बाबा को कहकर वहां से अगर यहां पर ही बात नहीं तो यहां कहां जाएगी, यहां पर ही कोई बात नहीं आई तो यहां कहां से जाएगी। और इसीलिए ये वाली बात बाबा को बता के इसको साफ कर दिया, तो इधर उसको जाने की मार्जिन नहीं है। तो ये चेतन मन में जो कुछ भी चल रहा है वो रात को सोने से पहले बाबा को बता के अपने आप को हल्का कर लो, तो ये अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड या चित्त चाहे जो भी नाम ले लो उसमें उसको जाने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। और वहां अगर वो नहीं गया तो सुबह उठते वो ख्याल नहीं आएगा, फिर नहीं तो वही ख्याल आता है, नहीं तो वही ख्याल आता है और वो फिर से आया माना वो फिर से कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अब वो तो, और कोई भी गंदगी जैसे टमाटर है, टमाटर कहीं पड़ा है वो गंदा हो रहा है, पहले तो क्या लगता है, पहले तो ताजा होता है, जब आया मार्केट से आया ताजा था, मैंने ध्यान नहीं दिया ऐसा पड़ा है, पड़ा है, मुरझाया, मुरझाने के बाद क्या होता है, खराब होना शुरू करता है। और खराब होने के बाद, खराब होने के बाद उसमें से जंतु निकलने लगते हैं, होता है ऐसा। ऐसे ही कोई भी बात अभी आज गई फ्रेश, ऐसे लगा क्या है कुछ तो नहीं है, लेकिन वहां पड़े पड़े वो क्या होगी, अभी जितना समय ज्यादा उसको संभाल के रखेंगे उतना वो पुरानी होते होते उसमें क्या आ जाएंगे, वो सड़ती जाएगी, गलती जाएगी और उसमें से जीव जंतु निकलते आएंगे। और मेरा चित्त जो थोड़ा सा खराब था पहले, अब ज्यादा हो जाएगा ना खराब, इसलिए छोटा सा फोड़ा होता है हम ध्यान नहीं देते, उसको यू यू करते रहते हैं और वो हमारा ऐसा ऐसा करना ही उसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, हद ना। तो हम भी क्या करें, एक बात गई अंदर, देखा था अभी ऊपर के मन में थी, लेकिन रात को सोने से पहले मैंने उसको निकाला नहीं तो अंदर चली गई। अब अंदर चली गई, अब बार बार मन में आ रही है, वो बनती जाएगी नासूर। और इसलिए अंदर की सफाई का ध्यान हमें रखना है, और अंदर की सफाई का ध्यान रखने के पहले ऊपर क्या चल रहा है उस पर भी अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला ही जाके नीचे बैठने वाला है। एक बार घर जमा लिया, कई बार नहीं चिड़िया लोग होती है आपके घर के किसी कोने में आके घोंसला बनाना शुरू करती हैं। अगर उसी क्षण देखा उसको और हटाया तो ठीक, बहुत समय के बाद देखा तो क्या होता है, तब तक तो वो घर बसा चुकी होती है और गंदा वंदा सब कुछ करती रहती, करती ठीक नहीं। तो इसलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छे नियम दिए हैं, एक तो नित्य ज्ञान का श्रवण करो, दूसरा कि ज्ञान का जब श्रवण कर रहे हो तो अपने जो मूल संस्कार है उसको बार बार याद करो, बार बार अपने आप को उठते बैठते याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक दृष्टि से देखो। पहली गंदगी यहीं से साफ हो जाती है, जब मैं अपने आप को आत्मा देखती हूँ और अन्य व्यक्ति को भी आत्मा के रूप में देखती हूँ। अगर देह के रूप में देखती हूँ तो ये ईर्ष्या छल कपट की बातें उठती है, लेकिन अगर आत्मा के रूप में देखती हूँ तो क्या याद आता है, ये आत्मा भी तो शांत स्वरूप है, ये आत्मा भी तो प्रेम स्वरूप है, ये आत्मा भी तो उसी पिता परमात्मा के घर से आई है जिस घर से मैं आई हूँ। तो हम दोनों ने जर्नी तो स्टार्ट की थी तो हम दोनों भी क्या थे, पवित्र थे, प्योर थे, ये तो माया के संग के कारण इसका रूप आज ऐसा है। तो उसके प्रति जो दूसरा भाव आता है ना वो आना बंद होगा, और जो दूसरा भाव आता है वो आना बंद हुआ माना एक होता है पहले से गंदगी है उसको सफाई करना, और दूसरा होता है अब यहां गंदगी न आए उसका ध्यान रखना। नहीं तो घर में गंदगी है, झाड़ू उठाई, सफाई की, लेकिन ऊपर से कोई कचरा फेंक रहा उसको रोका नहीं, तो कभी सफाई होगा कमरा? दिन भर झाड़ू लगाते रहो, क्या होने वाला है? और ऊपर से कचरा आता रहेगा। तो दोनों काम करने हैं। पहले से बहुत सारी गंदगी चित्त में जमा पड़ी है, उसकी सफाई। और दूसरा, अब अंदर नहीं जाए बाहर वाली, पहले अंदर वाली को ही साफ करना है, बाहर वाली अब और अंदर जाने नहीं देना है। तो ज्ञान का श्रवण करेगी ना, तो ये जो टोकरी है ना, चित्त रूपी टोकरी जिसमें सब संभाल के रखते हैं, गंदगी रोज क्या हो जाएगी, उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती जाएगी। और ये जो कहा कि रोज रात्रि को बाबा को सुनाएंगे, तो अभी अंदर जाने नहीं देंगे बाहर की गंदगी को, रोज रात्रि को बाबा को सब कुछ सुनाना है, बहुत सच्ची दिल से, वहां पे भी छुपाना नहीं है। कई बार चार्ट लिखते हैं ना, तो चार्ट में भी क्या करते हैं, क्या करते हैं चार्ट में, परसेंटेज 10% भी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं रही होगी दिन भर में, लिखेंगे मेरी आत्म अभिमानी स्थिति कितनी थी, 80% थी, है ना? तो ये भी क्या कर दिया, झूठ किया ना। तो अपने को ही, तो हम कई बार सोचते हैं कि दूसरे से झूठ नहीं, पहले अपने को चेक करो, मैं अपने साथ कितना झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैंने किया वो चित्त पर अंकित हो गया, लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहां से मिटने वाला नहीं है। मतलब जो बाबा ने आज कहा ना, मैं अंतर्यामी हूं, बाबा को दिखता है, बाबा को दिखता है, क्योंकि दिखता कैसे, वहां पे निशान पड़ जाते हैं ना, तो निशान तो बाबा को दिखेंगे ना, नहीं दिखेंगे। मैं अगर आत्मा को देख रही हूं, तो अगर ये पारदर्शी है समझो शरीर एकदम, तो अंदर की आत्मा दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो बाबा तो सीधा ही किसको देखता है, बाबा तो कहता मैं देह को नहीं देखता हूं, बाबा सीधा ही किसको देखता है, आत्मा को देखता है। तो बाबा को उस पर निशान नहीं दिखाई देंगे क्या? तो बाबा को निशान दिखाई देंगे वो। इसलिए पहला काम है, दूसरे से झूठ बोल रही हूं या सच बोल रही हूं पीछे की बात है, मैं स्वयं से कितना झूठ बोल रही हूं, स्वयं से कितना सत्य बोल रही हूं, वो अपने आप की चेकिंग पहले करनी है, तो अंदर की सफाई होगी। आजकल हम क्या करते हैं, ये है ना बापरे, अच्छो अच्छो को घुमाने में होशियार है, बोलते हैं ना, वो बातें ऐसे बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि झूठ भी क्या लगने लगेगा, सच। तो बाहर में तो भले दिखेगा, लेकिन अंदर में तो अंकित हो गया है ना जो कुछ वो कर रहा है। तो अपने आप से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरे को धोखा देने से पहले किसके साथ धोखा हो रहा है, मेरे अपने साथ धोखा हो रहा है। तो वो हम अपने आप को चेक करें, मेरा जो कुछ भी यहां सोच रही हूं ना, वो अंदर छपता जा रहा है। ओम शांति। तो हम देख रहे थे कि माया का संग होने के कारण झूठ बोलना, छिपाना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, नफरत करना, बदला लेना, ये हमारे पास है, कभी कभी न चाहते हुए भी उभर कर आ जाते हैं। लेकिन ज्ञान मिला है तो कम से कम जब मैंने गुस्सा कर लिया किसी पर, जब मैंने किसी से घृणा कर ली, जब मुझे किसी को देखकर ईर्ष्या आ गई, तो अपनी समीक्षा करें, मैंने गुस्सा तो कर लिया परंतु मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, एक्चुअली शांत रहना चाहिए था, मुझे क्या करना चाहिए था, प्रेम से बोलना था, मुझे क्या करना था, नम्रता से करना था। तो अपनी समीक्षा, वो आ रहा है क्यों, बहुत लंबे समय से वो संस्कार के बीज वहां पड़े हैं, लेकिन जब तक अगर मैं समीक्षा नहीं करती हूं तो उस बीज को पानी मिलता जा रहा है, लेकिन समीक्षा करना शुरू कर देती हूँ, माना अटेंशन जा रहा है, आज मैंने फिर से इस बीज को पानी दे दिया, मुझे इस बीज को पानी नहीं देना था, मुझे क्या करना था, मुझे तो ये वाले बीज को पानी देना था। कौन सा वाला बीज? सत्ययुग में, त्रेता युग में हम क्या कर रहे थे? मिलजुल के चल रहे थे ना, प्रेम से रह रहे थे ना। मुझे तो इस बीज को पानी देना था, क्योंकि मुझे अभी कौन सी दुनिया वापस लानी है? सत्ययुगी दुनिया वापस लानी है। तो उस सत्ययुगी दुनिया के संस्कार मैंने आज यूज नहीं किए ना, अभी नहीं, नेक्स्ट मोमेंट अटेंशन रखना है, मुझे इसको यूज करना है। तो याद दिलाएंगे तो कई बार होता है ना, आप मुझे याद दिलाना, वो पड़ी है चीज, पर मैं यही वाली उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि दूसरी अच्छी चीज भी पड़ी है, ऐसा होता है ना। तो बार बार अपने आप को याद दिलाना है, और गलती एक बार हो गई उसके लिए क्षमा मांगना भी है तो क्षमा देना भी है। ये क्षमा करना माना ही अंदर की चित्त जो मैला हो रहा है उस पे क्या लगा देना, गलती से चाय गिर गई ना, तो गिर गई तो गिर ही रहे क्या अभी? ठीक है, गलती हो गई मेरे से कि चाय गिर गई, गिरनी नहीं चाहिए थी, अब गिर गई तो क्या करने दू, गिर ही रहे क्या, क्या करूं, पोछा लगा दू ना। इसी को कहते क्षमा करना और क्षमा देना और लेना। हो गई है गलती, उसको स्वीकार करूं और उसको ठीक करूं। तो क्यों इम्पोर्टेंस है अंदर बाहर की सफाई में क्षमा का, क्योंकि वो ही सफाई का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबूजी जो थे, उनको किसी ने ना बहुत अच्छी पेन दी थी, गिफ्ट की थी, और बहुत प्यारी सी थी, उनको उस पेन से बहुत लगाव हो गया था, तो उसी पेन से हमेशा लिखते थे और अपनी टेबल पर संभाल कर खुद ही रखते थे। एक दिन क्या हुआ, जो उस ऑफिस की सफाई करने वाला जो सर्वेंट रखा हुआ था, वो बेचारा सफाई कर रहा था उस टेबल की, और गलती से पेन क्या हो गई, नीचे गिर गई और टूट गई। तो उन दिनों में तो इंक पेन होती थी, तो वो इंक नीचे बिछा जो गलीचा था, जो कालीन था, उस पर भी फैल गई, तो लाल जो राजेंद्र बाबू जी थे उनके कपड़ों पे भी उसके छींटे आ गए। तो राजेंद्र बाबू को बड़ा गुस्सा आया, और प्रधान राष्ट्रपति थे, अथॉरिटी वाले थे, पावर थी, देखा इतना सा गलती कर दिया, पावर तो थी, निकाल दिया उसको, तुम इस ऑफिस के लायक नहीं हो, चले जाओ यहां से। चले तो गया वो, क्योंकि उसको नौकर है ना, उसको तो पालन करना है आज्ञा का पालन, वो तो चला गया, लेकिन इसका मन क्या हो गया, अशांत हो गया। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं बातें करने के लिए, कि प्रधान राष्ट्रपति है ना, लेकिन बातें तो कर रहा है, लेकिन देख रहा है यहाँ पे कुछ तो भी खलबली चल रही है, और उसने ये भी नोटिस किया कि ये खलबली उस समय से है जिस समय मैंने उसकी छोटी सी गलती के लिए उसको डांट कर यहां से हटा दिया, और उसको समझ में आया कि इसको अगर शांत करना है वापस उसको मुझे बुलाना पड़ेगा। उसको बुलाया और उसको कहा कि आपने तो एक छोटी सी गलती की कि पेन गिराई, लेकिन उससे बड़ी गलती मेरे से हो गई है। वो सर्वेंट कहता, क्या हुई आपसे गलती? मेरे से गलती ये हुई कि आपकी छोटी गलती के कारण मैंने बड़ी गलती कर डाली, मैंने तुम पर गुस्सा कर डाला और तुमको नौकरी से निकाल दिया, और उसके बाद से मेरा मन जो है ना बहुत परेशान हो गया है। एक काम करो आप, है ना, फिर से इसी ऑफिस में अपनी ड्यूटी बजाना शुरू करो। बस ऐसा उसने उसको बोला नहीं है, और उसी समय वो क्या महसूस करता है, मेरा मन क्या हो गया है, शांत हो गया है। तो ये क्या था, क्षमाएं थी ना, और क्या थी। तो जरूरी नहीं होता है कि क्षमा माना मुझे क्षमा कर दो ऐसा बोलना। आजकल तो हम कितनी बार सॉरी शब्द यूज करते हैं, माफ कर दो बोलते हैं, वो जैनियों में हर साल वो एक मिच्छामी दुखड़म करके बोलते हैं, लेकिन फिर हर साल फिर क्या करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, रावण को हर साल जलाते हो, फिर अगले साल क्या होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। तो आजकल जब हम शब्द यूज करते हैं ना, सॉरी, माफ कर दो, क्षमा कर दो, बात शब्दों की नहीं है, बात अंदर में वो रियलाइजेशन। जैसे उस राजेंद्र बाबू को रियलाइजेशन हुआ कि मेरी ये जो अशांति है इस समय, वो उस वक्त से हुई है, मैंने उसकी छोटी सी गलती पे मैंने बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि इंसान से क्या गलती नहीं होती है? आज अगर मेरे हाथ से पेन गिरी होती तो क्या होता? मैं इस राष्ट्रपति के पद से बाहर निकल जाता क्या? तो इंसान से गलती होना पॉसिबल है, लेकिन उस गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना वो ठीक नहीं है। सजा तो मैंने दूसरे को दी, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूं, सजा मैं खुद भुगत रहा हूं। तो ये बारीकी से जब हम कुछ भी जब देखें ना, मन में कुछ चल रहा है, तो उसकी जड़ पे जाने की कोशिश करें। मैं शांत थी, फलाना आया, फलाने ने ऐसा क्या बोला, उसके बाद से मैंने क्या बोला, उसके बाद से हुआ है ना, उसके बाद से यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। तो उस समय मैं रियलाइजेशन कर लू, मैंने कुछ गलती कर डाली है, और गलती तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि उसका प्रायश्चित करूं मैं। रियलाइजेशन ही प्रायश्चित है, और उसको बुलाया, सामने वाले को भी तो पता चले ना किसने गलती रियलाइज की है। तो सिर्फ क्षमा, इसलिए कई बार हम क्षमा कर दो, सॉरी कर दो बोलते हैं, तो शब्द के रूप में बोलते हैं, लेकिन भाव नहीं होता है अंदर। तो भले माफी मांग ली, लेकिन मन की अशांति, वो अशांति गई नहीं, परेशानी अभी तक गई नहीं। और इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर बातें दी है कि हो सकता है कि इस जन्म में हमने किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं किया जहां मुझे दिखाई पड़े कि मैं क्षमा मांगूं, लेकिन हमारी लंबी जर्नी में हम बहुत कुछ करके आए हैं, और इसलिए यहाँ पे सिखाते कि मनसा से भी, इस जन्म के साथी भी नहीं लेकिन पिछले जन्मों में भी जो मेरे साथी रहे होंगे, जिनको मेरे कारण से दुख मिला होगा, वो मनसा से भी उनको अपने सामने इमर्ज करके क्या करो, दोनों काम करो। क्षमा मांगने की जरूरत है, क्षमा मांगो, क्षमा देने की जरूरत है, क्षमा दो। कि कई बार ऐसा ही नहीं होता कि उसने मेरे लिए गलत किया इसलिए मैं परेशान हूं। अभी राजेंद्र बाबू किसलिए परेशान था? अपनी गलती के कारण परेशान था। और कई बार होता है सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया इसलिए। तो इसलिए दोनों बातों की जरूरत होती है, क्षमा देने की भी और क्षमा मांगने की। और इसको बाबा दूसरे शब्दों में बहुत कहते हैं सुंदर से, दुआएं देते चलो और दुआएं लेते चलो, चाहे जीवन में कैसी भी घटना क्यों नहीं घटे, यहां पर हमेशा सबके लिए सुंदर अच्छी भावनाएं हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, उसका भी जिसने मेरे साथ अहित किया है, जिसने मेरा अकल्याण किया है, जिसने मेरा अमंगल किया है, उसके लिए भी इतनी सुंदर श्रेष्ठ भावना क्यों? कर्म फिलॉसफी याद कर ले। अगर आज जिसने मेरे साथ ऐसा अकल्याण किया भी है, तो जरूर कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी रहा होगा, जो आज आकर क्या हुआ है, सेटल हुआ है। अगर मैं फिर से इस वर्तमान में अमंगल दिख रहा है इसने किया है, और इस अमंगल के रिजल्ट में मैं नकारात्मक फिर से सोचने जा रही हूँ, माना मैं एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करने जा रही हूँ, तो ये कुचक्र जो है वो कभी खत्म होने वाला फिर नहीं है। और जब ये कुचक्र खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पे भी विचारों का जो भंवर चलता रहता है, फिर वो भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बेसिक फंडामेंटल्स जो बाबा ने दिए हैं, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, इसको जितना हो सके उतना बार बार अपनी स्मृति में लेकर आओ, क्योंकि जितनी बार इसको स्मृति में लेकर आओगे, जो पहले ही कहा कागज पे कुछ लिख रहे हो, बार बार उसी को लिख रहे हो, नीचे उतना गहरा निशान बन रहा है। और मन, जितना गहरा निशान, मन का खाना वही है, मन वही घूमता रहता है, मन वही घूमता रहता है। तो अगर बाबा ने जो ज्ञान दिया, इसको बार बार मैं स्मृति में लाऊंगी, बार बार चित्त में उसके गहरे निशान पड़ेंगे, मन वही जाएगा, और मन वही जाएगा तो परिस्थिति अमंगल भी दिखी लेकिन मन फिर भी यही बोलेगा, कार्मिक अकाउंट कुछ सेटल हो गया, नहीं तो नहीं बोलेगा मन, नहीं तो ऐसा मन नहीं बोलेगा। फिर कुछ बात आई, गुस्सा किया नहीं, अगर मैंने बार बार अपने आप को याद दिलाया मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, उसकी गहरी यहाँ पे छाप पड़ गई, तो भले सामने वाला मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है, मेरा मन फिर भी यहीं पे चक्कर लगाएगा, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो जो मन में होगा वो मुख से बाहर आएगा, जो मुख में होगा वही व्यवहार में आ जाता है। तो संस्कारों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मन बुद्धि की सफाई में, चित्त की सफाई में। तो संस्कार हम ऐसे पक्के कर लें जो बाबा ने हमें दिए हैं। तो इस ज्ञान को बार बार रिपीट करते रहो, और उसके लिए ज्ञान को बार बार श्रवण करते रहो, ये हमको मदद करेगा। हमारी चित्त रूपी टोकरी जो है लकड़ी की, जिसमें से छेद है बहुत, उसमें मिट्टी जो भर पड़ी हो क्या होती जाएगी, नीचे निकलती बहती जाएगी, और वो हम साफ होगा। और जब चित्त बिल्कुल साफ होगा ना, तो इधर जो आत्मा है ना, कहा ना इधर आत्मा, शरीर माना इधर इंद्रियां, और इधर बीच में मन, इधर वाला चित्त, इधर वाला पर्दा, चित्त ही साफ है तो इधर आत्मा जो क्या है, प्रकाश का बिंदु है, जिसमें से प्रकाश की किरणों का प्रवाह कंटिन्यूस निकलता रहता है। तो ये चित्त पर पड़ेगा, अब ये चित्त रूपी दर्पण साफ हो गया तो ये प्रकाश और बाहर आएगा, और ये और बाहर आएगा माना कहां बाहर आएगा, इंद्रियों से बाहर दिखाई देगा, तब कहा चेहरों में क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी चमक। वो चमक नहीं जो हम ब्यूटी पार्लर के कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे साधन यूज करके लाते हैं, है ना, ओरिजिनल चमक, ओरिजिनल ब्यूटी। तो सफाई होगी तो जीवन में सुंदरता, ब्यूटी, चमक, रोशनी अपने आप आएगी, और वो ही काम करेगा ज्वाला स्वरूप स्थिति का। ज्वाला माना, ज्वाला में क्या होता है, प्रकाश ही होता है, कुछ और होता है, प्रकाश होता है ना, तो चेहरा बन जाएगा प्रकाश से युक्त, माना ज्वाला स्वरूप, और ज्वाला स्वरूप से क्या हो जाएगी, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो हमें अंदर बाहर की सफाई पर अटेंशन रखते चलना है। ओम शांति।